जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय जय प्रभु
श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथा श्रीमद भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथाश्रीमद् भागवतम स्कंद 3 और अध्याय 3 और श्लोक संख्या है 24। पुर्यां कदाचित् क्रीडद्वे पुर्यां कदाचित् क्रीडद्वे यदुभोजकुमारके गोपिता मुनयः सेपो ओ पिता मुनया सेपो भगवत्मत कोविदा पुर्या कदाचित् क्रीडद्वे यदु भोज कुमारके को पिता मुनयः सेपो भगवत्मत कोविदा पुर्यां कदाचित् क्रीडद्वे यदु भोज कुमारके को पिता मुनयः सेपो भगवत्मत कोविदा
पुर्यां कदाचित् क्रीडद्वे
यदुभोजकुमारके
को पिता मुनया सेपो
भगवन्मत कोविदा
पुर्यां कदाचित् क्रीडद्वे
यदुभोजकुमारके
को पिता मुनया सेपो भगवन्मत कोविदा पुर्यां कदाचित् क्रीडद्वे यदुभोजकुमारके
भगवन्मता कोविदा
कदाचित्
क्रीडन्वे
कुमारके
गोपिता मुनिहसेपो भगवत्मता कोविदा यदुभोजकुमारके ओ पिता मुनयः सेपो भगवन्मता कोविदा पुर्यां कदाचित् क्रीडन्वे यदुभोजकुमारके भगवन्मता कोविदा
यदुभोजकुमारके
पिता मुनि आशेपो भगवत मत गोविदा। पुर्याम द्वारकापुरी में कदाचित एक बार त्रिड़द्वी तृणाओं द्वारा यदु यदुवंशी भोज भोज के वंशज कुमार के राजकुमारों द्वारा कोपिता क्रुद्ध हुए मुनयः मुनियों ने सेपु साप दिया भगवत भगवान की मत इच्छा कोविदा जानकर। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। एक बार यदवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए तो उन्होंने भगवान की इच्छानुसार उन राजकुमारों को साप दे दिया। तात्पर्य भगवान के वे संगी जो कि यदु तथा भोज वंशों के राजकुमारों को भूमिका निभा रहे थे सामान्य जीव न थे। ऐसा संभव नहीं कि वे किसी संत पुरुष या मुनि का अपमान करते या मुनि गण जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे पवित्र यदु या भोज वंशों से उत्पन्न राजकुमारों के किसी प्रकार की क्रीड़ा पर क्रुद्ध होते क्योंकि स्वयं भगवान इन्हीं के वंशज के रूप में अवतरित हुए थे। मुनियों द्वारा राजकुमारों का शापित होना क्रोध प्रदर्शन के लिए भगवान की एक दिव्य लीला थी। राजकुमारों के इसलिए साप दिया गया था कि लोग जान सके कि भगवान के वे वंशज भी भगवान के महान भक्तों के कोप भाजन हो सकते हैं जिन्हें प्रकृति के किसी भी कार्य द्वारा कभी भी विनष्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए मनुष्यों को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि वह भगवत भक्त के चरणों पर कोई अपराध ना करे। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव मे विशदो मानस पार राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्त कंठावरोदन विदो स्मरणं कुतस्ते। सदेव देवो भगवान प्रतिच्छतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं। प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लस मुखाम्बुजो ध्यान पचतुर्भुजम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है इसमें सुबह के श्रीमद् भागवतम सत्र में। तो श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद का तीसरा अध्याय का 24 नंबर श्लोक, इसमें उद्धव जी जो कृष्ण के प्रिय सखाओं में से एक। उद्धव जी वो भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। इस स्मरण की प्रक्रिया को करते हुए वो हरेक श्लोकों में हरेक लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है 24 नंबर श्लोक, जिसमें उद्धव जी भगवान के उस लीला का स्मरण कर रहे हैं। कौन सी लीला? भगवान के जो संगीगण थे या जो यदुवंशी थे उनके विध्वंस की लीला। उनका विध्वंस भी एक लीला है, तो उस लीला का स्मरण कर रहे हो। तो आज के श्लोक में केवल मात्र स्मरण मात्र है, और इसका जो डिटेल है वो दशम स्कंद में आता है इस लीला का वर्णन। तो आज का जो श्लोक है, पुर्याम कदाचित क्रीडत भी यदु भोज कुमार के कोपिता मुनेह सेपु भगवत मत कोविदा। कदाचित अर्थात एक बार, किसी भी लीला का जब किसी भी प्रसंग का प्रारंभ होता है तो कदाचित से एक बार की घटना है, एक बार इस प्रकार से शुरू होता है। तो कदाचित पुर्याम, एक बार पुर्याम अर्थात पुरी, कौन सा पुरी? द्वारिकापुरी। तो कदाचित पुर्याम, क्या द्वारकापुरी में क्या? तो कहते यदु भोज कुमारक है कि यदु भोज कुमारक है, यदुवंश तथा भोजवंश। भोजवंश अर्थात जिसमें एक कंस इस भोजवंश के अंतर्गत आता था, क्योंकि मथुरा से कंस के भी सारे परिवार को भगवान लेकर सबको लेके आ गए थे ना द्वारिका। तो ये भोजवंशी यदुवंश मतलब जिसमें भगवान प्रकट हुए, यदुवंशी और भोजवंशी है ना, इसलिए यदु भोज कुमारक है। कुमारक अर्थात बहुवचन शब्द है यहाँ पे। तो कुमार कह मतलब उन राजकुमारों ने, कौन से राजकुमारों ने? यदुवंश के और भोजवंश के राजकुमारों ने या बालकों ने कुमारक है क्या किया? तो कहते हैं क्रीडा की, क्रीड़ा किए, खेल खेले। तो प्रश्न उठता है ना, कौन सा खेल खेले? अभी उस खेल का वर्णन यहाँ पे इस श्लोक में है नहीं, लेकिन लीला का स्मरण कर रहे हैं तो डिटेल वर्णन श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में है, क्या खेल खेले वो लोगों ने। तो खेल क्या खेले प्रश्न उठता है कि कदाचित पुर्याम द्वारकापुरी में, एक बार की घटना की द्वारकापुरी में यदु भोज कुमार का, इस यदुवंशी और भोजवंश के कुमारों और बालकों ने क्रीड़ा किया। क्रीड़त भी, क्या क्रीड़ा किया? तो खेल यह था जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में है कि खेल की एक बार की घटना है कि ये जो बालक थे यदुवंशी और भोजवंशी के, ये बालक खेल खेल रहे थे और खेल खेल में उन्होंने एक दृश्य को देखा। क्या दृश्य देखा? कि कुछ ऋषि मुनि, कुछ मुनि लोग आ रहे थे, ऋषि मुनि लोग आ रहे थे। तो उन्होंने उन मुनियों को देखकर, उन साधुओं को देखकर एक ऐसा एक मस्ती उनके अंदर आया। ऑलरेडी खेल ही रहे थे वो लोग, लेकिन होता है ना कभी कभी हम गांव में जाएंगे तो बालक लोग कैसा साधु के देख कर, अरे बाबा जी आया, अरे जोगी आ गया, है ना, मजाक करते हैं ना, ऐसा इस प्रकार करते हैं। तो ऐसे ही वो बालक लोग जैसे ही ऋषि मुनियों को देखा, उनको अंदर एक मस्ती और एक मजाक करने का सूझा। तो उसमें जाम्बवती, जो भगवान की एक पत्नी जाम्बवती है, उस जाम्बवती का जो पुत्र था सांब, उस सांब को अभी इन ऋषि मुनियों को देखकर उनको एक मजाक करने का सूझा कि हम इनके साथ थोड़ा मजाक करते हैं। तो मजाक करने के लिए उन्होंने जो सांब को ना एक स्त्री का वेश बनाया, स्त्री को रूप दिया उसका, सजाया उसको, स्त्री का रूप बना दिया। और वो कौन सी स्त्री? गर्भवती स्त्री, गर्भवती स्त्री का रूप बनाया और उसके उसके पेट को भी बाहर निकाला, गर्भ के जैसा दिखाया और उसके अंदर कपड़ा इत्यादि जो भी भर दिया ऐसा, और करके उस गर्भ को उसको धारण करा के और उसका वेश बदल के उन ऋषि मुनियों के पास वो लेके जाते हैं सारे बालक लोग। और उन ऋषि मुनियों से क्या पूछते हैं कि इस, आप बताइए, आप तो सर्वज्ञ हैं, वर्तमान भूत और भविष्य को जानने वाले ऋषिगण हैं। हम मजाक करते हैं लोग ऐसे, हम भी फेस करते हैं ऐसा, तो बताइए कि इस गर्भ में पुत्र है या पुत्री? इस प्रकार का मजाक किए, इस गर्भ में क्या है, पुत्र है कि पुत्री, ये प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि ये प्रश्न आजकल के संसारिक लोग भी पूछते हैं, एक गर्भवती महिला या अपनी पत्नी को ले जाकर किसी हॉस्पिटल में भ्रूण, जिसको भ्रूण जांच बोलते हैं ना, कि गर्भ में क्या है, पुत्र है या पुत्री है, है ना। और पुत्री है तो स्वभाव को इसलिए जानना चाहते, पुत्री है तो उसको मार देना चाहते, जो कि भ्रूण हत्या के रूप में भी फेमस है, कितना है, सब लोग एक कराते हैं ऐसा। तो इसी प्रकार का तो वो उसके उसको ऋषि मुनियों के सामने इन बालकों को, उस सांब को ऋषि को दिखाया गया और उसे यह प्रश्न पूछे सारे बालक लोगों को, बताइए कि क्या है, पुत्र है या पुत्री है। तो ये जो एक मजाक किया उन लोगों ने, जिसका परिणाम क्या हुआ, वो परिणाम को तीसरे और चौथे लाइन में जो भी है श्लोक का उसमें बताते, उस परिणाम को कि ऐसा भद्दा मजाक किया और मजाक का रिजल्ट क्या निकला। तो कहते हैं मुनयः कोपिता सेपु, कि ये जो मुनि गण थे जिनके साथ इस प्रकार का भद्दा मजाक किया गया था, मुनयः, मुनयः मतलब बहुवचन है, यहाँ पर एक मुनि नहीं, बहुत सारे मुनि गण थे, बहुत सारे साधु थे, और उनके साथ इस प्रकार से भद्दा मजाक किया गया, और जिसके कारण मुनयः कोपिता, ये मुनि गण क्या हुए, कोपित हो गए। तो मुनि गण कोपित होके क्या किया उन्होंने, सेपु अर्थात साप दे दिया। लेकिन अंतिम लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं। एक्चुअली ये अंतिम भगवत मत को विदा, इसके ऊपर प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं। तो साप क्या दिया, साप क्या दिया, साप यह दिया कि ना लड़की और ना लड़का, ना तो ना तो पुत्र ना तो पुत्री, लेकिन एक गर्भ जरूर प्रकट होगा, लेकिन कैसे, एक मुसल के रूप में प्रकट होगा, जो तुम सारे यदुवंशियों भोजवंशियों को नाश का कारण बनेगा। ये ऋषि मुनि ने इस प्रकार से श्राप दे दिया। तो अभी लेकिन वो श्राप दिया ऋषि मुनियों ने, लेकिन वो श्राप भगवत मत को विदा, भगवान की मत को जानने के बाद वो श्राप दिया। क्यों, कि एक ऋषिगण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये ऋषिगण वही ऋषि मुनि थे जो इन इन्हीं लोग को गाइडेंस करते थे, यदुवंश भोजवंश को गाइड करते थे, शिक्षा देते थे और उनके प्रगति के लिए सोचते रहते थे, ये वही ऋषिगण है। तो क्या ऐसे ऋषिगण उन बालकों के मजाक करने पर क्या वो श्राप दे सकते थे, नहीं दे सकते थे। आचार्यगण कहते हैं कि वो साप नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो जानते थे और ये जान गए ऋषि मुनि कि ये जो मजाक किया गया हमारे साथ, तुरंत जान गए, क्योंकि सर्वज्ञ थे ना, सभी चीज को जानने वाले लोग थे, इसलिए तुरंत समझ गए। और तुरंत समझने के बाद उन्होंने सांप दिया, लेकिन वो सांप किसके वशीभूत होकर दिया, भगवान मत को विदा, भगवान को इच्छा है ऐसी, भगवान की क्या इच्छा है कि वह इस समय यदुवंशों और भोजवंशों का अपने धाम में लेके जाना चाहते हैं, ये इच्छा है भगवान का। इस इच्छा को, भगवत मत को विदा, इस भगवान के मत को जानते हुए उन ऋषि मुनियों ने उनको श्राप दे दिया, अन्यथा श्राप नहीं देते। इन भगवान की इच्छा को जानते हुए इन ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया। और इसी के ऊपर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य है, बहुत छोटा ही एक ही पैराग्राफ का है, लेकिन उस तात्पर्य में दो चीजों को प्रभुपाद जी बताते हैं, दो पॉइंट्स को रखते हैं प्रभुपाद जी। सबसे पहला यह कि यदुवंश और भोजवंश जिसका वर्णन यहाँ पे हुआ है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये भगवान के वंशज थे, भगवान के पार्षद थे, भगवान के संगी थे, ये कोई साधारण नहीं थे, इस बात को प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। तो भगवान के पार्षद होने के कारण, भगवान के नित्य सिद्ध होने के कारण, भगवान के सखा होने के कारण, यह संभव नहीं था कि वो इन ऋषि मुनियों के प्रति अपराध करे, ऐसा बेहुदा मजाक करे, संभव नहीं था। इस बात को प्रभुपाद जी लिखते हैं कि संभव नहीं था, क्यों, क्योंकि ये भगवान के वंशज थे, जितने भी बालक थे और ऋषि मुनियों से अपराध किए, भगवान के वंशज थे, और भगवान के वंशज, भगवान के मित्र सखा इत्यादि होने के नाते वह ये संभव नहीं था कि इन ऋषि मुनियों के प्रति अपराध करे, ये संभव नहीं था, लेकिन फिर भी अपराध किया। और यही बात उन ऋषि मुनियों के लिए लिखते हैं कि भले से उन लोगों ने मजाक किया, लेकिन ये ऋषि मुनि गण भी उनका हित चाहते थे, और उस हित चाहने वश वो उनको श्राप नहीं देते, लेकिन केवल इसमें एक ही बात महत्वपूर्ण है, भगवत मत को विदा, भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा को जानते हुए उन ऋषियों ने श्राप दिया और भगवान की ही इच्छा से ये सारे लोग इस प्रकार की मजाक करने का इनको सुझा, नहीं तो अन्यथा इस प्रकार के मजाक ये यदुवंशी और भोजवंशी करते ही नहीं, वो बालक लोग बिल्कुल नहीं करते, लेकिन केवल भगवान की इच्छा होने के नाते उन्होंने इस प्रकार का मजाक किया और भगवत मत कोविदा भगवान की इच्छा होने के कारण इन ऋषि मुनियों ने उनको श्राप दिया, क्योंकि श्राप देने के बाद इनका विनाश होगा। ये भगवान की इच्छा है, भगवान की इस प्रकार की भगवान की लीला में सहयोग, लीला में भाग लिए ऋषि मुनि श्राप देकर, एक प्रकार से कहा जाए तो श्राप दिए, लेकिन भगवान की इच्छा को जानते हुए भगवान की लीला में भाग लेने के लिए उन्होंने इस प्रकार का श्राप दिया। अभी दूसरी बात जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत शिक्षणीय बात है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस लीला में जो ये भी जो यदुवंशियों का विनाश का लीला है, जो भी श्राप दिया ऋषिगण ने, तो इस लीला में भगवान हमको हम सभी लोग को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। वो क्या यह शिक्षा देना चाहते भगवान कि भगवान के वंशज जो कि प्रकृति के गुणों के अधीन कभी नहीं होते, अगर इस प्रकार का भगवान ने प्लान नहीं बनाया होता, ऐसा लीला करने का नहीं सोचा होता, तो इन यदुवंशियों या बोधवंशियों को, इन सारे लोग को प्रकृति भी नहीं मार सकती थी, इनके प्रकृति के गुणों के परे थे ये लोग, इसलिए भगवान ने ऐसा प्लान बनाया। प्रकृति इनको प्रकृति का प्रभाव पड़ता ही नहीं इनके ऊपर, इसलिए कि प्रभुपाद जी इस बात को बता रहे हैं कि भगवान इस लीला से हमको यह शिक्षा देना चाहते हैं कि ये जो यदुगण थे जो कि भगवान के वंशज थे, इनके ऊपर प्रकृति का प्रभाव, प्रकृति कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी भगवान ने इनको अपने धाम में लेके जाने के लिए इस प्रकार का अपराध कराया इन ऋषियों मुनियों के प्रति, क्योंकि भगवान अपने ही भक्तों को शिक्षा देने के लिए अपने ही उन्नत भक्तों को ही चुनते हैं, जिसका पतन कराते हैं और उससे शिक्षा देते हैं भगवान, किसी अरे गहरे व्यक्ति को नहीं पकड़ते भगवान, किसी एक उन्नत व्यक्ति को, उन्नत भक्तों को ही भगवान चुनते हैं, जिसका पतन कराते हैं और वो उस पतन से हम सभी जीवों को, हम बद्ध जीवों को शिक्षा देना चाहते हैं। जैसे प्रज्वलित उदाहरण है सौवरी मुनि का, सौवरी मुनि भगवान के महान भक्त थे और इतने महान थे सौवरी मुनि कि वह इस संसार के जंजाल से हटकर, जंजाल से छोड़कर, संसार को छोड़कर वो उन्होंने विचार किया कि मैं यमुना के जल में जाकर तपस्या करूंगा, भजन करूंगा, है ना। भक्त लोग को इसी प्रकार का, जैसे माने कई, जैसे जगन्नाथ बाबा जी महाराज, ये लोग ऐसे ही एकांतिक में लोगों से दूर हटके और ऐसे गंदे स्थानों पर जाके बैठते थे कि कोई वहां पे आए ही नहीं और भजन करते थे, तो दूर हटकर। तो इसी प्रकार से सौवरी मुनि जो है इस संसार के लोगों से थोड़ा साइड हटकर वह यमुना के स्थान को चुने, यमुना के जल को चुना और यमुना के जल में जाकर उन्होंने तपस्या करने लगे। तो ऋषि तो थे ही और सक्षम थे वो यमुना के जल के अंदर बैठ के भजन करने के लिए। तो एक दिन की घटना है कि उस यमुना जल में कुछ मछलियां, क्या हुआ कि उस एक दिन की घटना है कि गरुड़ देव जी उस यमुना के ऊपर से जा रहे थे, उस यमुना के ऊपर से जा रहे थे तो उन्होंने क्या, उनको भूख लगा और स्वाभाविक है गरुड़ देव को भूख लगा तो तुरंत अपने, और हर व्यक्ति को भूख लगता तो भोजन को ढूंढता ही है, प्रसाद तो ढूंढता ही है, लॉकर तो खोलता है, किधर किधर कुछ मिल जाए ऐसा करके, भूख लगती है तो सबका आदत है। तो गरुड़ जो को भूख लगा उस यमुना के इधर से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि यमुना है और निश्चित रूप से मैं इसके अंदर डुबकी मारूंगा तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, और कुछ जो भी मिला खा के वापस चला जाऊंगा। और गरुड़ जी ने वहां पर डुबकी मारा और डुबकी मारकर कुछ मछलियों को खाया और चले गए। उनका आहार है वो ना, सर्प इत्यादि मछलियों को खाना, ये सब आहार है उनका गरुड़ देव का। तो उन्होंने खाकर निकल गए, लेकिन क्या हुआ, जिन मछलियों के फैमिली में से किसी को खाए होंगे वो लोग डिस्टर्ब हो गए। डिस्टर्ब होने के नाते उन्होंने क्या देखा कि एक ऋषि जो है इस यमुना के जल में तपस्या कर रहा है, इसलिए त्राहिमाम करते करते उस ऋषि का शरण ले लिया सौवरी मुनि का इन मछलियों ने। और सौवरी मुनि का शरण लिया जब, तो उसी समय देखिए भगवान कैसे प्लान बनाते अपने भक्तों का पतन कराने के लिए, है ना। सौवरी मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे और भगवान ने उनको चुना, उनका पतन करा के हमको शिक्षा देने के लिए। तो उन मछलियों ने सौवरी मुनि का आश्रय को ग्रहण किया, और बोलने लगे कि हमको बचाइए, इस प्रकार का गरुड़ कभी भी आते हैं और खा के निकल जाते हैं, हमारे परिवार में कोई कोई ना कोई टपक जाता है। तो इस प्रकार से जैसे ही उनके शरणागत, जैसे ही शरण को ग्रहण किए, तो स्वाभाविक है ऋषि है, दयावान होते हैं और उन्होंने शरण को आए हुए उनको आशीर्वाद दिया कि तुम लोग चिंता मत करो, आज से मैं श्राप देता हूं कि गरुड़ यहाँ पे दोबारा कभी नहीं आएगा इस यमुना में, और आएगा तो जल के भस्म हो जाएगा। कितना भाई मछलियों का क्या क्या औकात है, जो क्या छोटी छोटी मछलियां उनको उनको बचाने के चक्कर में, उनके ऊपर दया दिखाने के चक्कर में क्या किया सबरी मुनि ने, एक महान भगवत भक्त के चरण कमलों में अपराध कर दिया। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो एक महान भक्त के अपराध चरणों में अपराध कर दिया, और उस अपराध का परिणाम क्या हुआ, उस अपराध का परिणाम यह हुआ कि जिन मछलियों को उन्होंने बचाया था उन्हीं मछलियों को आपस में सहवास करते हुए देखकर उनके अंदर काम इच्छाएं को जागृत हुई, और उन काम इच्छाओं को लेकर उस यमुना से जल को तपस्या सब छोड़कर वो निकल कर गए मथुरा के राजा मानदाता के 50-50 कन्याओं से शादी कर लिया। और ये देखिए वैष्णव अपराध, अपराध का फल जो कि इसी वैष्णव, क्योंकि इनके प्रति अपराध नहीं कराते अगर भगवान, ऐसा प्लान नहीं बनाते तो इनका विनाश होना संभव ही नहीं था। और इस अपराध का एक तो ये अपराध हुआ, और इस अपराध का देखिए अपराध के बाद उसका एक और भी साइड इफेक्ट होता है। जैसे दूसरा क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, कुछ मछलियों को बचाने के लिए भक्त के चरणों में अपराध कर दिया गरुड़ देव के, जिसके कारण उनका तो पतन हुआ ही, लेकिन जिन मछलियों के ऊपर उन्होंने दया दिखाया था उन मछलियों का भी नाश हो गया। कैसे नाश हो गया, जब ये पता चला उस कालिया को, कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में तो रमणक दीप में रहता था कालिया, तो जैसे ही उसको ये पता चला तो वो क्या किया, सब वो भी परेशान था गरुड़ से, उसके भी उधर तो कुछ तो टर्म कंडीशन भी बनाता कि हाँ चलो कौन जाएगा, ये सब रेडी करके रखता था गरुड़ जी के लिए, फिर भी तो जा तो रहे अपने ही फैमिली में से कोई ना कोई, इसलिए जैसे ही उसको ये पता चला वो क्या किया, सह परिवार आकर कालिया में यमुना में रहने लगा। और अभी क्या हुआ, कुछ मछलियों के बचाने के चक्कर में इधर सौभरी मुनि ने तो अपराध किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला, उस सारे मछलियों, केवल एक दो मछली नहीं, उस यमुना के सारे जीव जंतु जितने भी थे सारे लोग मर गए उस कालिया के प्रभाव से। यहाँ पे आचार्यगण कहते हैं कि अगर हमारे हृदय में अगर भक्तों के लिए स्थान नहीं रखेंगे, भक्तों के लिए जगह नहीं रखेंगे हमारे हृदय में, तो ऐसा कालिया रूपी असुर आकर उस हृदय के अंदर बैठेगा और सब कुछ तहस नहस कर देगा। तो इस प्रकार से ये अपराध है जो कि बहुत भयंकर होता है, और इस अपराध के बारे में मैं रामायण से कुछ प्रसंग को पढ़ रहा था, जहां पे बहुत सुंदर प्रसंग है भगवान शिव और सती का, बहुत सुंदर प्रसंग है और उन प्यारों में उन चौपाइयों में बहुत अच्छे से वर्णन हुआ है, तो हम थोड़ा से उस प्रसंग को, इस भगवान शिव और सती के प्रसंग को देखते हुए और ये वैष्णव अपराध का कितना भयंकर होता है स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा से समझने का प्रयास करेंगे। तो उस रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार कदाचित, एक बार, एक लीला का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी कि एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि, भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास गए, कैलाश से उतरकर कुंभज ऋषि के आश्रम में गए एक ही उद्देश्य से, भगवान राम के कथाओं को श्रवण करने के लिए, और वो अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, अपने साथ में सती को लेकर, अपनी भार्या पत्नी को लेकर वो कैलाश से कहां पे गए, कुंभज ऋषि के आश्रम में गए, और कुंभज ऋषि के आश्रम में एक ही उद्देश्य था कि कथा, बैठ के कथा सुनना है उस ऋषि के मुख से। लेकिन अभी वहां से अपनी भार्या अपनी पत्नी सती को बोलकर शिव जी कि कथा का श्रवण करना है, और कुंभज एक महान ऋषि है वो, उनके पास जाकर हम उन कथाओं को, भगवान के कथाओं को सुनेंगे, ऐसा कहकर अपनी भार्या को लेकर सती को लेकर गए। और जब लेकर गए, जैसे ही पहुंचे उस ऋषि के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, तुरंत ही उस ऋषि ने, कुंभज ऋषि ने तुरंत ही उठकर शिव जी को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, ये वैष्णवता है। लेकिन जैसे सबसे पहले कुंभज ऋषि उस आश्रम में से उठे, तुरंत भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम किया, लेकिन सती के माइंड में तुरंत एक विचार उत्पन्न हो गया। क्या विचार उत्पन्न हुआ कि हम कैलाश से आए हैं, मैं तो सोची थी कि बहुत बड़ा उन्नत भक्त होगा, कोई कोई ऋषि मुनि होगा जिसके पास हम कथा सुनने जा रहे हैं और मेरा पति, हम साथ में मिलकर कथा सुनने जा रहे हैं, लेकिन ये तो मेरे पति को प्रणाम कर रहा है ना। वो पति कितना महान हो, स्त्रियां अपनी पति को ऐसे ही समझती, गया गुजरा ही समझती एक्चुअली। तो ये तुरंत माइंड में सती के विचार आ गया। क्या विचार आया कि कैलाश से उतर के आए, हम तो सोचे थे कि महान ऋषि होगा, लेकिन ये तो मेरे पति को प्रणाम कर रहा है। और तुरंत, और शिव जी ने भी प्रणाम किया बाद में, लेकिन सबसे पहले कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो अज्ञानवश ना लोग नहीं समझ पाते हैं वैष्णव के व्यवहार को, वैष्णव के नम्रता को, इस सबको नहीं, कभी कभी दिखावा मात्र सोचते कि दिखावा कर रहा है ऐसा, कभी कभी नहीं समझ। जैसे कि मीरा रोड में सुधांशु प्रभु कथा कर शुरू, एक बार मैं एक दिन के कथा में गया था, तो एक बार वो कथा में बोलते बोलते, चैतन्य भागवत के ऊपर कथा कर रहे, तो बोलते बोलते क्या बोल रहे कि आमी बड़ा मूर्ख। तो कोई एक बैठा था नया नया, बोला मूर्ख है तो उधर क्यों बैठा है, कोई ज्ञानी को बैठा हो ना। तो कभी कभी ना ऐसा विचार आता है अज्ञानतावश ऐसा विचार आता है, लेकिन उसको क्या पता है भाई, हमारी आचार्य, हमारी परंपरा है, हम मूर्ख ही है, हम जो बोल रहे हैं हमारे आचार्यों के कहे अनुसार उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो अज्ञानता। तो सती के माइंड में इस प्रकार का विचार आ गया कि हम, मैंने तो सोची तो कोई होगा बड़ा चढ़ा, लेकिन ये तो मेरे पति को प्रणाम कर रहा है। लेकिन जो भी हो, शिव जी कथा सुनने आए थे और कुंभज ऋषि ने कथा प्रारंभ कर दिया, प्रारंभ किया और कथा सुनाने लगे। देखिए, सती के मन में ये जो विचार आया ना, इसके कारण उन ऋषि के प्रति श्रद्धा टूट गया, जिसके कारण क्या हुआ, सती को कथा में नींद आ गया। क्योंकि जब उसके प्रति श्रद्धा है नहीं, तो निश्चित रूप से सोना आएगा, हाँ नींद आएगा, श्रद्धा ही नहीं है, तो सती को नींद आ गया कथा में। और शिव जी बहुत मग्न से, और कुंभज ऋषि सुना रहे हैं और शिव जी सुन रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि कुछ देर, आधा घंटा बीत गया या टाइम हो गया करके, तो ऐसा होता है ना, बीच बीच में ये नींद की परंपरा तब से ही चलती आ रही है, ऐसा कोई नई बात नहीं है, कथा में नींद आती ही है। तो बीच में नींद खुलता था, घड़ी पे टाइम जाता, टाइम हो गया क्या, नहीं हुआ, चलो 5 मिनट। तो सती को जैसे ही थोड़ा सा निद्रा ऐसा आया, तो तुरंत उसने शिव जी को इशारा किया, चलो अभी हो गया टाइम, घर चलते हैं, है ना। कभी कोई ऐसा बैठे रहते हैं सब कथा में, लेकिन देखिए पत्नी के एक इशारा मात्र से उस पति का ना रिमोट दबा दिया और घूम जाता है, तुरंत उठ के निकल जाता है, है ना, चैनल चेंज हो जाता है तुरंत। तो शिव जी तुरंत देखे कि अभी इसको जाना है, अभी डिस्टर्ब करेगी इसलिए, लेकिन शिव जी परम सुख थे एक्चुअली। वहां पे गोस्वामी जो वर्णन करते हैं, सुनहि महेश परम सुखमानी, शिव जी बहुत आनंदमय थे उस कथा को सुन के, बहुत आनंद ले रहे थे, लेकिन सती के एक इशारे मात्र से घर जाने की इच्छा व्यक्त की। तुरंत ही गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनि संग वेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तुरंत ही शिवजी तुरंत उठ के चले नहीं गए, उन्होंने तुरंत ही ऋषि से क्या किया, विदा मांगी, और विदा मांग के और यहाँ पे दक्ष कुमारी के साथ संबोधन बदल गया। यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि सबसे पहले जब सती आई थी ना, संग सती जग जननी भवानी संबोधन था, लेकिन यहाँ पे संबोधन बदल गया। क्या संबोधन बदल गया कि संग चली, लेकिन कौन चली, दक्ष कुमारी चली, जैसा बाप वैसे ही पुत्री, है दक्ष का तुरंत संबोधन बदल दिया। क्यों? क्योंकि अपराध किया कुंभज ऋषि के चरणों में, इसलिए यहाँ पर संबोधन बदल गया। तो इस प्रकार से तुरंत ही शिव जी निकल पड़े, और शिव जी निकल नंदी के ऊपर बैठे, माता भी बैठी, और नंदी लेकर चलने लगे और अपने भवन को निकले। लेकिन शिव जी के जो कथा सुने थे ना, वो माइंड में उन कथाओं का विचार चल ही रहा था शिव जी का, और एक ही अभिलाषा था कि प्रभु राम का दर्शन हो जाए, ये अभिलाषा लिए मन के अंदर और उन्हीं कथाओं का स्मरण करते हुए शिव जी जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा नंदी के ऊपर बैठे ही थे, सती भी साथ में थी, लेकिन उन्होंने तभी एक तुरंत दृश्य को देखा। क्या दृश्य को देखा? त्रेता युग चल ही रहा था, भगवान राम जी प्रकट हो चुके थे, मर्यादा पुरुष लीला भी कर रहे थे और उनका विवाह भी हो चुका था, रावण सीता को ले भी जा चुका था। अभी प्रभु राम क्या कर रहे हैं? सीता की खोज में उस दंडकारण्य में प्रभु राम रोते हुए सीता को ढूंढ रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, रोने का वर्णन करते हैं उन प्यारों में, हे खग मृग ए मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम खग मृग पशु पक्षियों पेड़ पौधों से पूछते हुए रोते हुए सीता की खोज कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, और क्या तुमने मेरे मृग नैनी सीता को देखा है क्या, इस प्रकार से पूछते हुए प्रभु राम ये लीला कर रहे थे। और यही दृश्य देख लिया कौन? शिव जी ने देखा। और जैसे ही शिव जी ने देखा, नंदी का त्याग किया, तुरंत उतर के दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि कथा का जो फल प्राप्त हो गया, भगवान प्रभु का दर्शन हो गया। अब फिर से ये दृश्य देखिए, सती ने जब देखा कि उतर के दंडवत मारा, किसको मारा दंडवत? किसको मारा? जैसे ही दंडवत करके उठे, सती का यही प्रश्न था, किसको प्रणाम किया आपने? तो बोले कि देवी, जिसका हम कथा सुन के आ गए ना, उसका साक्षात दर्शन हो गया, उस राम का, प्रभु राम का साक्षात दर्शन हुआ, अपनी लीला को कर रहे और धन्य हो गए हम तो। सती बोले कि वो भगवान है, भगवान राम है, ये कैसा भगवान है? पत्नी के विरह में रो रहा है, पागलों की तरह पशु पक्षी इनसे उनसे पूछ रहा है, मेरी मृग नैनी को देखा है क्या, ये कैसा भगवान? अगर ये भगवान है, आप बोल रहे हैं भगवान है, तो मैं इसकी परीक्षा लूंगी। और उस समय सती ने जिद कर लिया। वहां पे वर्णन है बहुत प्यारों में कि शिवजी ने बहुत समझाया, लेकिन सती समझी नहीं, बोले नहीं मैं परीक्षा लूंगी, अगर ये भगवान है तो मैं परीक्षा लूंगी, भगवान इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकते। सती ने तुरंत परीक्षा ले, और उस समय शिव जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए, बोले ठीक है तुमको जो करना है करो, जाओ तुम परीक्षा लेना है, लो, और बैठ गए एक पेड़ के नीचे, और सती गई परीक्षा लेने के लिए। तो सती ने सोचा कि क्या परीक्षा लूं, तो उन्होंने देखा किसके विरह में रो रहे हैं, सीता के विरह में रो रहे हैं, इसलिए उसने सोचा क्या कि मैं सीता का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो जाती हूं। तो सीता का रूप धारण करके भगवान के सामने प्रकट हो गई सती, भगवान के सामने गई तुरंत, और भगवान उस समय तुरंत इस सीता को देखते हुए, जो कि सती थी लेकिन सीता को वेश धारण कर लिया, देखते ही प्रभु ने तुरंत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करके उठ के बोले कि माते आप अकेले, शिव जी किधर है? और जैसे ही वर्ड सुना ना, सती ऐसा सोची कि धरती फट जाना चाहिए और मैं चली जाऊं, तुरंत सती को ऐसा आभास हुआ, लेकिन क्या करे, अभी कुछ उसको बुद्धि काम नहीं कर रहा है। वहां पे कुछ लिखते हैं कि भगवान भले से जानते थे, लेकिन ऐसा प्रणाम करने की क्या जरूरत था? तो भगवान प्रणाम इसलिए किए कि अपनी माया जो थी, माया के ऊपर हंसते हुए कि वाह रे माया, आज तुमने सती को भी नहीं छोड़ा, इसलिए भगवान ने उसको प्रणाम किया। तो अभी क्या हुआ, सती वहां से भागी, कुछ नहीं बात की, और भागते हुए वर्णन है कि चारों बाजू उसको राम ही राम दिख रहे हैं, और भागते भागते कैसे भी अपने आप को समझा रहे, कंट्रोल करते करते सूजी जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वहां पे पहुंची, और वहां पे पहुंची तो एकदम जैसे कुछ करके ही नहीं आया, ऐसा करके वहां पे अपने आप को प्रस्तुत किया। शिव जी बोले हो गया परीक्षा, चले परीक्षा ले लिया? बोले नहीं प्रभु, परीक्षा नहीं लिया मैंने, क्योंकि आपने जब बोल दिया कि वो अगर भगवान है, तो फिर मैंने सोचा कि परीक्षा लेने की क्या जरूरत है। देखिए सबसे बड़ा, और देखिए यही स्थिति हम सबकी है एक्चुअली। सती ने सबसे पहला अपराध किया कुंभज ऋषि के चरणों में, दूसरा उस कथा में सो गई, वो भी एक अपराध था, तीसरा अपराध किया कि वो अपनी पति की बात नहीं माने, चौथा अपराध किया कि भगवान की परीक्षा ली, और पांचवा अपराध किया कि हाँ झूठ, अभी झूठ बोलने वाला बात बताया नहीं मैंने तो भगवान की परीक्षा ली, पति का बात नहीं माना, भगवान को नहीं समझी, भगवान को नहीं समझी और भगवान की परीक्षा ली, और उसके बाद छठा अपराध यह किया कि भगवान की पत्नी सीता का रूप धारण किया, यह भी बड़ा अपराध हुआ है। तो वहां पे मुनि कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सारे अपराध उसके माफ हो गए होते अगर शिव जी को झूठ नहीं बोला होता, तो सारे अपराध माफ हो गए होते। तो यहां पे हमको ये सीख लेना चाहिए कि कभी भी अगर हमसे कुछ ऐसा अपराध होता है, कुछ इस प्रकार की चीजें हो जाती या गलत काम हो जाता है, कभी भी गुरु के पास और जो जिनका हम शरण लिए उसके पास कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी, क्योंकि उसके पास झूठ बोलेंगे तो हमारा निश्चित रूप से विनाश पक्का है। जैसे यहां पे सती का विनाश हुआ, जैसे ही झूठ बोला शिवजी के पास सती ने, शिवजी ने देख लिया कि सती कितना बड़ा झूठ बोली मेरे से, मेरी मां का रूप धारण किया, मन ही मन शिवजी ने वहां पे सती को त्याग दिया, सती को बोला नहीं लेकिन मन ही मन त्याग दिया। और जैसे ही मन में सती को त्यागा, क्योंकि अगर मैं वापस इसके साथ रहूंगा तो मेरा धर्म टूटेगा, इसलिए सती ने मन ही मन त्याग दिया, और मन त्यागते ही तुरंत वर्णन है कि वहां पे सारे देवता आकाश में प्रकट हुए और पुष्प की वर्षा करने लगे। सती सोचे ये क्या हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। शिव जी बोले तुमको समझ में, मन ही मन सोचे तुमको समझ में तुम्हें नहीं आएगा, चलो चलते हैं अभी, त्याग दिए मन ही मन। और इसके कर देखिए, शिव जी से झूठ बोला, महान वैष्णवा नाम यथा शंभु गुरु से झूठ बोला, जिसके कारण सती को इस शरीर को त्यागना पड़ा, सती को मरना पड़ा, दूसरा शरीर लेना पड़ा, वापस वो शिव जी के पास नहीं, फिर वापस उसको जन्म लेना पड़ा, फिर पार्वती के रूप में फिर जाके शादी होता है शिव जी के साथ। तो ये अपराध का बहुत भयंकर फल होता है। तो ये वह स्थूल रूप से हम देखे, देखिये सूक्ष्म अपराध भी है, ये सूक्ष्म लेवल पे भी अपराध होता है, मन के स्तर पे भी अपराध होते हैं। जैसे ही हमारी भक्ति में प्रगति होता है मन के स्तर पे भी अपराध होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखे रूप गोसाई पाद, रूप गोसाई पाद भगवान के लीलाओं का स्मरण कर रहे थे, बैठे हुए भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए रमण कर रहे थे, लीलाओं का स्मरण करते हुए, और उन लीलाओं का स्मरण करते 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 वो क्या हुआ कि आंख बंद था उनका, स्मरण कर रहे थे, कोई ऐसी लीला का स्मरण कर रहे थे राधा कृष्ण के, कि उनको उस लीला का स्मरण करते करते मतलब हंसी आ गया, थोड़ा मुस्कुराने लगे। लेकिन सामने क्या हुआ, एक कोई भक्त जा रहा था जिसका लंगड़ा था, जो भी था अपंग था, और उसने क्या देखा कि ये साधु है और मुझे देखकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। और ये बात तो रूप गोस्वामी पाद को पता भी नहीं था, पता भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा सोचा तुरंत भगवान अप्रकट हो गए, तुरंत अप्रकट हो गए, क्योंकि अपराध हो गया, इस सूक्ष्म लेवल पे हुआ। और उसका निवारण करने के लिए, क्योंकि वो भक्त थे रूप गोस्वामी पास, जानते थे कि ये लीला जो भंग हुआ और कोई रीजन हो ही नहीं सकता, केवल वैष्णव अपराध ही हुआ है, लेकिन कैसे पता चलेगा, वो तो चल रहा था, वो चला गया, वो देखे भी नहीं उसको कौन है करके। इसलिए सनातन गोस्वामी पास से विचार विमर्श करने के बाद बहुत बड़ा भंडारा रखा सबको खिलाने के लिए, उसमें सारे और वो भी आया था, उसमें खिला खाया और वो नहीं आया था, तो कैसे गया उनका, पूछते हैं। अच्छा, तो जाके फिर उनके साथ माफी मांगे तो उनका दूर हुआ। तो इस सूक्ष्म लेवल पे हुआ। तो इस प्रकार से जो अपराध का परिणाम है ना, बहुत भयंकर होता है। श्रीमद भागवतम के दसम स्कंद में जहां पे कंस का अत्याचार है, कंस का अत्याचार है, वहां पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि आयु श्रेय यशो धर्म लोकानाशिष एवच हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महद अतिक्रम। कि अपराध का जो फल क्या होता है, आयु श्रेय यशो धर्म, आयु श्रेय यशो धर्म, जो आयु है वो खत्म हो जाता है, और श्री या सुंदरता या लक्ष्मी चली जाती है उसके पास से इस अपराध से, और उसके यश खत्म हो जाता है, धर्म की हानि हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर पुंसो महद अधिक्रम, अगर वो भगवान के भक्त के प्रति अपराध करता है, तो जैसे कि हिरण्यकश्यपु ने घोर तपस्या की, बड़ा आयु प्राप्त कर लिया था, लेकिन जब वो प्रहलाद के प्रति अपराध किया तो यो चला गया, उसका सारा आयु खत्म हो गया। और उसके बाद सती का उदाहरण, सती का जो तेज था वो चला गया शिव जी के प्रति अपराध करके, और उसके बाद इंद्र बृहस्पति के प्रति अपराध करता है, उसका यश खत्म हो जाता है, गिर पड़ता है। तो इस प्रकार से जो अपराध का जो फल है बहुत ही भयंकर होता है। और जैसे कि हिरण्यकश्यपु ने घोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और लंबी आयु प्राप्त किया, लंबी आयु, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में इस बात को बताया गया, जहां पे हिरण्यकश्यपु का आतंक होता है, जिस आतंक के कारण सारे ब्राह्मण भक्त संसार के सारे लोग बहुत परेशान हो गए थे हिरण्यकश्यपु के आतंक से, और इतना विचलित हो गए थे सब लोग कि सब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। लेकिन वहां पे वर्णन है कि उस समय आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी क्या हुई, भगवान के ही शब्द थे, आकाशवाणी के रूप में उन भक्तों उन ब्राह्मणों को सांत्वना देने के लिए आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा दृश्येत इनेश्यपि वरोर्जितम्। आकाशवाणी होगी कि हे ब्राह्मणों, हे भक्तों, तुम चिंता मत करो, जब यह हिरण्यकश्यपु निर्वराय प्रशांताय, जब निर्व किसी से बैर न रखने वाले और प्रशांत हृदय वाले उस स्वसुताय अपने ही पुत्र प्रहलाद के चरणों में जब अपराध करेगा तो निश्चित रूप से इसका नाश होगा, इसलिए चिंता का विषय नहीं, तुम लोग चिंता मत करो, निश्चित रूप से जब ये अपराध करेगा प्रहलाद महाराज के प्रति, जो कि भागवत है महाजन है, उनके प्रति जब उनके चरणों में एक अपराध करेगा तो उस समय निश्चित रूप से इसकी हानि हो जाएगी। हाँ, इस प्रकार से तो ये जो वैष्णव अपराध है, चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, पागल हाथी के समान है। ये हाथी तो कितना डेंजरस होता है ना, नींद नहीं आया था, जैसे मान लीजिए ये बाउंड्री के अंदर एक हाथी है, वो मधुमस्त हाथी है, तो हमको क्या रात को नींद आएगा? नहीं आएगा। या तो कोई शेर है हाय आजू बाजू, तो हमको नींद आएगा रात को? नहीं आएगा। मतलब ये अपराध जो है इसी प्रकार का बहुत डेंजरस है। चैतन्य महाप्रभु ने बार बार इंगित करते हैं इसको, बताते हैं हम भक्तों के लिए कि ये पागल हाथी के समान है, इसलिए हमको इसको बचना चाहिए। तो अभी ये अपराध क्यों होते हैं, ये अपराध क्यों होते हैं, क्या कारण है अपराध होने का, कैसी कहां से प्रवृत्ति उठती है इस अपराध की, तो इसका भगवान ने भगवद गीता के 16वें अध्याय में जहां पे आसुरी स्वभाव का वर्णन करते हैं भगवान, वहां पे बहुत सुंदर तरीके से इस श्लोक में बताते हैं कि दंभो दर्भो विमानस्य क्रोध पौरुषमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरी, कि जहां पे आसुरी स्वभाव का वर्णन करते हैं भगवान, कहते इस आसुरी स्वभाव के कारण हम दोष देखने लगते हैं। ये जो स्वभाव है ना आसुरी, वो उसके कारण, उस स्वभाव के कारण हम लोगों में दोष देखने की प्रवृत्ति हो जाती है, और ये दोष देखने की जो प्रवृत्ति है ना, इससे ही हम कीर्तन करने लगते हैं। हाँ, श्रीधर स्वामी कहते हैं निंदनम दोष कीर्तनम। निंदा हम कब करते हैं? जब हम किसी में दोष देखना चालू कर देते हैं, तब हम क्या करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उस कीर्तन करने लगते हैं उसके बारे में, मतलब उसके अवगुणों का कीर्तन करने लगते हैं। निंदनम दोष कीर्तनम, ये जब दोष देखने की जब बुद्धि होती है तभी ये शुरू होता है। लेकिन ये दोष देखने की बुद्धि होने के बाद भी ना, देखिए वाणी से कभी निगने ही निकाला, मान लीजिए मन के अंदर आ भी गया ऐसा विचार, तो हमको वाणी से उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत का के पहले श्लोक में क्या बताया है, वाचो एवं, वाणी के वेग को कंट्रोल करो, भले से मन के अंदर कुछ चला ऐसा, लेकिन फिर भी वाणी से मत उसको प्रकट करो, नहीं तो भयंकर परिणाम होगा उसका, प्रकट नहीं करना चाहिए। वाचो वेगम, वाणी के वेग को बहुत बहुत सुंदर तरीके से वहां पे, एक्चुअली मैं भक्त इनका जीव गोस्वामी का बात का भक्ति संदर्भ पढ़ा था, एक्चुअली भक्ति रसानंद महाराज उन्होंने ऐसा कोट किया कि भक्ति संदर्भ में इन अपराध के बारे में वर्णन है, तो मैंने भक्ति संदर्भ को लेकर मैंने एक्चुअली पूरा इस अपराध के ऊपर भक्ति संदर्भ से ही पढ़ा एक्चुअली, तो पूरा पढ़ा मैं, पूरे उस प्रसंग को 2 घंटे में पढ़ा, तो बहुत 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 सारे डिटेल, बहुत सूक्ष्म चीजों को वहां पे लिखा हो गया है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ग्राम कथा ना सुनबे ना तो कहबे, है ना, इस प्रकार के चैतन्य महाप्रभु भी इंगित करते हैं, ये वाणी का वो ये गई इसको दंड, इस वाणी के वेग से हमको किसी को दंडित नहीं करना नहीं चाहिए, हमको किसी, हमारा काम नहीं है कि मान लो अपराध कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, गलत कर रहा है, तो हमारा वो कार्य नहीं कि हम उसको दंड दे। जैसे कि है ना, सुदर्शन को भगवान ने क्या करके रखा हुआ है कि भक्तों का जब भी उसके जीवन में संकट आए तो तुरंत तुम चले जाना, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि भक्तों के जीवन में इतना समस्या आता, बहुत सारे समस्या आता, सुदर्शन आता ही नहीं बचाने के लिए, भगवान तो उसको फ्री छोड़ा हुआ है, फिर भी क्यों नहीं आता है। तो वहां पे एक आचार्य कहते हैं कि वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो निकलता है लेकिन हम उससे पहले दंडित देते हैं, दंड कर देते हैं तुरंत, हम वाड़ी रूपी सुदर्शन को छोड़ देते हैं, इसलिए सुदर्शन वापस चला जाता है कि तो अपना काम कर खुद ही कर रहा है ऐसा, इसलिए बचाने के लिए नहीं आता है। इसलिए ये वाणी का जो वेग है ना, इसको बहुत संयम रखना चाहिए, नहीं तो ये हमारा निष्पतन करा ही देता है। तो हम दंड नहीं दे सकते, दंड हम नहीं दे सकते हैं, ये काम भगवान का है, गुरु का है, ये अथॉरिटी का है, लेकिन हम दंडित नहीं कर सकते हैं। हमको केवल एकमात्र सहन करना है और सहन ही करना चाहिए। लेकिन मन में एक प्रश्न उठता है कि ठीक है कोई बात नहीं, दंड देना हमारा काम नहीं है, बट ये भगवान का काम है ना दंड देना, तो इतना दिन हो गया, सालों बीत गया, तो भगवान को दिखा नहीं क्या, अभी तक दंड नहीं दिए, ये भी प्रश्न उठता है मन के अंदर। तभी तो हमारे कम हो जाता है ना श्रद्धा भगवान के ऊपर, ऐसा कम होने लगता है कि मेरा दंड देना काम नहीं, मैं सहन करूंगा। लेकिन सालों से वो ऐसा कर रहा है और भगवान फिर भी दंड नहीं दे रहे, तो इसके ऊपर एक्चुअली बहुत सुंदर समझाते हैं राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, बहुत सुंदर समझाते हैं। कहते हैं कि यदि वह खराब है तो दंड देना हमारा काम नहीं है, और भगवान क्यों नहीं दंड दे रहे हैं? अरे भगवान इसलिए नहीं दंड दे रहे हैं, वो खराब है इसलिए नहीं दंड दे रहे हैं, वो दंडित नहीं कर रहे क्योंकि खराब है। दृष्टांत क्या देते हैं कि जैसे कि एक बालक है स्कूल में पढ़ता है ना, वो हर क्लास में टॉप करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक बार ऐसा हो गया उसके साथ कि वो फेल हो गया, जो टॉप करता था वो फेल हो गया, तो तुरंत ही सारे टीचर प्रिंसिपल उसके सबको सबका नजर उसके ऊपर जाएगा, सबका नजर जाएगा तुरंत उसको उठाने का। ऐसे ही कोई बहुत सुंदर भक्त है, बहुत सरल है और बहुत सब कुछ कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसका ऐसा लगता है कि वो पतन होने वाला था, जो गुरु और वैष्णव होते हैं तुरंत क्या करते हैं उसको संभाल लेते हैं। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट है बार बार वो फेल ही हो रहा है तो उसको कौन है, तो हर बार ये तो हर काम ही है, हर बार ही फेल हो रहा है, बार बार कर रहा है, भगवान बार बार यही कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं है, जन्म 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 ठीक है। तो इसलिए दंड देना हमारा काम नहीं, यही आभूषण जो है त्रिराधपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, इस प्रकार का हमको केवल सहन सहन करने की कोई माप नहीं है, हमेशा सहन। जैसे कि गुरु महाराज के व्यास पूजा में कमलोचन प्रभु जो ऑफरिंग दिए, परेशान होके गए थे कि बहुत हद हो गया कितना सहन करे, तो महाराज ने यही जवाब दिया, 40 साल से मैं सहन कर रहा हूँ, कितना सहन करना वो जवाब नहीं दिए, जवाब क्या दिए, मैं 40 साल से सहन कर रहा हूँ, बस उत्तर मिल गया। सब कब तक सहन करना है, तुमको सहन करना है बस है? और मैं कुछ पॉइंट्स नोट किया हूँ भक्ति संदर्भ में से ही, कि अभी जीव गोस्वामी पाद 60 संदर्भों की रचना किया, उसमें से भक्ति संदर्भ के अंदर का जो भक्ति का वर्णन करते हैं उस संदर्भ के अंतर्गत इन अपराधों का, जैसे अपराध हो रहे हैं तो कुछ तो लक्षण होना चाहिए, पता होने का कुछ लक्षण हो जिससे कारण हम सतर्क हो जाए, तो इस लक्षण को उस प्रभाव को बताते हुए जीव गोस्वामी पाद 60 संदर्भ के भक्ति संदर्भ में कुछ 5 लक्षणों को बताते हैं, वो डिस्कशन करके हम खत्म कर देते हैं। 5 लक्षणों को बताते हैं कि अगर हमारा किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो रहा है तो उसके क्या प्रभाव क्या लक्षण है, तो उस लक्षणों को बताते हुए सबसे पहला लक्षण है कि वो कपटी होता है, उसके अंदर कपट की भावना होती है, मतलब सरल नहीं रहता है वो, और ये बताते हैं कि भक्ति करता है लेकिन भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं करता है वो, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करता है, सरलता उसके अंदर नहीं रहती है, कपट की भावना रहती है, ये पहला लक्षण है अपने आप को देखने के लिए कि क्या हम किसी वैष्णव के चरण कमलों में अपराध कर रहे हैं क्या। इस प्रकार की भावना अगर आ रही है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए सेवा कर रहे हैं लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, दिखाएंगे तो शायद वो हमारे बारे में अच्छा सोचेगा, है ना, लोगों कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, इस प्रकार का कपट की भावना जो है ना, ये पहला लक्षण है अपराध का, इस प्रकार का ये पहला लक्षण को बताते हैं। और वहां पे जीव गोस्वामी पास कुछ प्रश्न भी करते हैं और कुछ उत्तर को देते हैं। प्रश्न क्या करते हैं कि अगर भक्ति हम कर रहे हैं, भक्ति कर रहा है और कपट भी है साथ में, तो क्या भक्ति का ऐसा प्रभाव नहीं है कि उस कपट को जला के खत्म कर दे? तो जीव गोस्वामी पास कहते हैं कि है, भक्ति का प्रभाव है, उसमें कोई कमी नहीं है, अगर वो भक्ति कर रहा है तो उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन कैसा उदाहरण देते हैं कि जैसे अग्नि और लकड़ी, अग्नि में लकड़ी को जलाने का शक्ति है कि नहीं है, जला सकती लकड़ी को, अग्नि लकड़ी को जला सकती है, लेकिन वर्णन करते हैं कि जैसे कि अग्नि है और बीच में एक दीवाल है और बाजू में लकड़ी है और वो लकड़ी जल नहीं रहा है। कोई देखता है तो क्या बोलता है कि अग्नि लकड़ी को क्यों नहीं जला पा रही है, क्या अग्नि में गुण है ही नहीं, गुण अग्नि का चला गया। लेकिन उस दीवाल है बीच में जिसके कारण वो लकड़ी को जला नहीं पा रही है, और वो दीवाल है और कुछ नहीं, वह है अपराध का दीवाल। ये अपराध का दीवाल है जिसके कारण ये भक्ति का जो प्रभाव नहीं पड़ पाता है, क्योंकि जहां पे अपराध होता है भगवान भक्ति ये सब कुछ वहां से उसको छोड़ देते हैं, अपराध जहां पे होता है। तो भक्ति का प्रभाव है लेकिन उस दीवाल अपराध रूपी दीवाल के कारण वो लकड़ी जल नहीं पा रहा है। दूसरा दृष्टांत देते हैं, दूसरा दृष्टांत यह देते हैं जो गोसाईपाद की, कुएं के अंदर पानी है तो कोई जाके कुएं में से पानी निकाल रहा है, कुएं में से पानी निकाल रहा है और एक बकेट निकाला दुर्गंध में फेंक दिया, लेकिन उस कुएं में क्या है, एक कुत्ता मर गया है कुएं में, एक कुत्ता मरा हुआ उस कुएं में है। व्यक्ति पानी निकाला, एक बकेट निकाला दुर्गंध आया, दूसरा बकेट निकाला फिर से फेंक दिया, तीसरा निकाला फिर से फेंक दिया, चौथा निकाला फिर, कोई आके कहे अरे भाई इस कुएं का जल ही खराब है, कुएं का जल नहीं खराब है, उसमें से मरे हुए कुत्ते को बाहर निकाल दो देखो बाद में, और ये मरा हुआ कुत्ता और कुछ नहीं है, वैष्णव अपराध है, मरे हुए कुत्ते को बाहर निकालो देखो बाद में, वापस वो पानी अपने आप, जो पानी का गुण है वो सुगंधित आएगा, जो गुण है पानी का वो अपने आप में दिख जाएगा। तो ये अपराध, ये प्रश्न उठाकर कहते हैं कि गुण है भक्ति में कोई, उसके पास ताकत है, लेकिन अपराध रूपी जो दीवाल, अपराध रूपी दीवाल के कारण वो ये नहीं कर पाती, सक्षम नहीं हो पाती है। तो ये सबसे पहला लक्षण बताते हैं कि कपट की भावना उसके अंदर रहती है और वो केवल किसी और को संतुष्ट करने में या दिखाने में और भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करता है। और दूसरा लक्षण बताते हैं कि उसमें श्रद्धा की कमी होने लगती है। हम कृष्ण भावनामृत में आए तो क्या लेकर आए, श्रद्धा लेके आए, श्रद्धा था तभी हम आए। एक साधु के प्रति, मान लो हम बोल सकते हैं कि हमको ये प्रभुजी ने प्रचार किया है, हम इनको देख के आए, तो उस साधु के प्रति श्रद्धा था इसलिए हम आए। तो जब तक श्रद्धा नहीं होता है ना, वो व्यक्ति नहीं आता है, भले से वो साधु के प्रति श्रद्धा हो या भगवान के प्रति या मंदिर के प्रति हो, लेकिन श्रद्धा के धन को ही हर एक व्यक्ति लेके आया है। तो ये श्रद्धा जो है ना, अपराध का जो दूसरा जो लक्षण है, दूसरा जो प्रभाव है, जो गोसाईपाद बताते हैं कि श्रद्धा में कमी आ जाती है, श्रद्धा में कमी होने लगती है। क्या कमी होती है, गुरु वैष्णव शास्त्र और भगवान के प्रति मतलब अविश्वास होने लगता है, इसमें अवश्य रचवे कृष्ण विश्वास पालन ये सब में कमी होने लगता है। शास्त्रों के प्रति अरे यही तो रोज पढ़ रहे, रोज तो सुन रहे, कुछ नहीं हो रहा है, रोज तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, अरे कुछ होता ही नहीं है, रोज तो इनको हम प्रणाम करते हैं, रोज तो इनके साथ में रहते हैं, कुछ होता ही नहीं है। तो इस प्रकार की अश्रद्धा जागृत होने लगती है, अश्रद्धा आने लगती है, और श्रद्धा धीरे धीरे चली जाती है, जो कि शुरुआत भक्ति का श्रद्धा से ही हुआ, आदो श्रद्धा, मतलब श्रद्धा खत्म हुई तो वापस चले जाएंगे भक्ति से, क्योंकि जो धन को लेकर आए तो हम खो देंगे उस धन को, वो श्रद्धा ही चली जाएगी तो फिर हम रहेंगे ही नहीं इधर, हम चले जाते हैं फिर। इसलिए दूसरा जो लक्षण है अपराध का, वह श्रद्धा में कमी आने लगती है और वो व्यक्ति भक्ति के ये अपराध के कारण वो धीरे 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 उसका पतन होने लगता है। इसलिए ये दूसरा जब लक्षण दिख जाके, हमारी श्रद्धा गुरु वैष्णव भक्त गुरुजनों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, भगवान के अंदर अगर श्रद्धा की कमी होने लगी तो समझ जाइए कि कुछ न कुछ अपराध हो रहा है, ऐसा तो हमको ये इंगित करता है। और तीसरी बात बताते हैं कि असत तृष्णा, असत तृष्णा, बहुत अनेक प्रकार की तृष्णाएं अंदर जागृत होने लगती है। एक्चुअली भक्ति करने से तृष्णाएं खत्म होती है, जैसे कि विष्णु पितामह अपनी स्तुति में वर्णन करते हैं ना, इति मति रूप कल्पिता भी तृष्णा, मेरी मति को मैं आपको देना चाहता हूं, आपसे विवाह कराना चाहता हूं, आपको सरेंडर करना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि भी तृष्णा, अब ये मेरी मति तृष्णाओं से मुक्त हो चुकी है इसलिए मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। लेकिन जब अपराध होता है ना तो ये तृष्णाएं बढ़ने लगती है, मतलब शरीर की वांटिंग बढ़ने लगती है, बहुत लोभ होने लगता है ना, हमको ये चाहिए, मतलब भौतिक सुविधाओं के प्रति आसक्ति बढ़ने लगती है। ये तीसरा लक्षण है अपराध का, ये अगर इस प्रकार का आए, तृष्णाएं बढ़ने लगे, इच्छाएं भौतिक इच्छाएं और भगवत सेवाओं से विमुख होकर भौतिक इच्छाओं के प्रति ज्यादा आसक्ति और ज्यादा प्रेम होने लगे और उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा होने लगे, तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ वैष्णव अपराध हो रहा है, ये तीसरा लक्षण। और चौथा लक्षण बताते हैं कि साधना में ढीलापन, कि साधना जो है हमारा उसमें हम ढीला होने लगते हैं, वो ढीलापन होने लगता है। साधना का ढीलापन भी ये अपराध का ही कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लक्षण है। और विशेषतः उसका वर्णन तो बहुत करते हैं, लेकिन विशेषतः साधना का ढीलापन, मतलब जैसे कि हमारे माइंड में फिक्स रहता है कि साधना मतलब सुबह इतने बजे उठ के और 9 बजे तक करना है, वही है। लेकिन विशेषतः उसमें जो महत्वपूर्ण विषय है वो क्या होता है, हरिनाम के प्रति रस खत्म होने लगता है। ये जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि हरिनाम में रस नहीं आ रहा है, हरिनाम लेते समय रुचि नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपराध है। ये चौथा लक्षण है अपराध का, जिसमें ढीलापन होने लगता है, हरिनाम में रस नहीं आता है और उसके प्रति अरुचि होने लगती है, और ये अपराध का एक लक्षण है। और जीव गोस्वामी पाद पांचवा और अंतिम बताते हैं कि गर्वित होने लगता है। दो प्रकार के गर्व का वर्णन करते हैं, भक्ति मिली है हमको, एक गर्व होना चाहिए, सही अहंकार है, मिथ्या अहंकार और सही अहंकार, अहंकार होना चाहिए, होना चाहिए अहंकार, लेकिन सही अहंकार होना चाहिए, मिथ्या अहंकार नहीं। लेकिन गर्वित है, जैसे कि अमूल्य रूपी धन भक्ति हमको मिला है, अमूल्य धन है, एक्चुअली बहुत बड़ा धन है, इससे बड़ा धन कोई है ही नहीं संसार में। भक्ति रूपी जो धन है बहुत ही बड़ा अमूल्य धन है, लेकिन इस ये धन को प्राप्त करके व्यक्ति घमंड होने लगा, गर्वित होने लगता है। कैसा गर्वित, ये मिथ्या अहंकार वाला गर्व, मिथ्या अहंकार वाला गर्व होने लगता है कि मेरे से तो महान कोई नहीं, तुम क्या है, तुम वो सांसारिक व्यक्ति पड़ा रहता है और उसको उसको कृपा न करके इस प्रकार का उसको आलोचना करता है, हाँ उसको कृपा करके और उसको प्रेम से बात करके न ला के वो अपने आप को ही महान बताता है कि मैं कितना बड़ा हूँ, ये हो इस प्रकार के जो मिथ्या अहंकार, इस प्रकार की बातें वो करने लगता है। तो इस प्रकार से ये जो पांच चीजों को जीव गोसाई पाद बताते हैं कि ये जो लक्षण है, इन ये इस जो लक्षण है, अगर लगते हैं हमको तो हमको निश्चित रूप से सावधान हो जाना चाहिए। भक्ति रसामृत महाराज बहुत सुंदर एक बात को बताते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज है, भक्ति जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि भक्तों के साथ आपस में प्रेम से रहना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर जिस दिन हम इसको पा गए ना, प्रेम से रहने लगे ना, समझ लो हमारी हम प्रगति कर गए, मतलब हमारा जीवन सफल हो गया। सबसे बड़ा चैलेंज है भक्तों का संग, बताते हैं कि भक्तों का संग उस लेबोरेटरी के जैसा है जहां पे लोग बहुत सारा ज्ञान लेके आते हैं, वहां पे प्रैक्टिकल रूप में करते हैं, है ना, प्रैक्टिकल। तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी गीता भागवत जो भी पढ़ते हैं, भक्तों की संगति करते हैं, लेकिन भक्तों के संगत में रहकर उसको ये प्रैक्टिकल करना है कि प्रेम, भक्तों के आपस में प्रेम जो है ना वो बढ़े। अगर प्रेम भक्तों के आपस में बढ़ने लगा तो निश्चित रूप से समझना हमारी प्रगति हो रही है, मतलब केवल प्रेम, बिल्कुल अपराध नहीं, तभी जाके इस हरिनाम में रस आएगा, रस आएगा। तो इस कुछ बातों को वैसे डिटेल वर्णन करते हैं जीव गोस्वामी पाद, लेकिन कुछ लक्षणों को, ये लक्षणों को एक्चुअली मैंने पढ़ा तो पता चला, महाराज ने इंगित किया, जैसे इंगित किया कि जीव गोस्वामी पाद इन लक्षणों का वर्णन करते, तो मैं वो उठा के पढ़ा तो मुझे मिल गया, एक्चुअली मिल गया। तो ये जीव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर तरीके से इन लक्षणों का वर्णन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको सावधान रहना चाहिए, चैतन्य महापुरुष बार बार इंगित करते हैं कि पागल हाथी किस समान है और हमको उससे सावधान रहना चाहिए। अगर हो रहा है तो ये सारे लक्षण है, इससे हमको पता कर लेना चाहिए और अपने आप को इस प्रकार से आपस में प्रेम बढ़ाकर, आपस में अच्छे से रहते हुए हमको इस हरिनाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। नहीं, जो जिनको ये अथोराइज है, जो अथॉरिटी है, उनको उसमें नहीं नहीं करना चाहिए हमको, हाँ अधिकारी नहीं है तो वहाँ पे हमारा काम नहीं है फिर, अधिकार अधिकार नहीं है तो हमको देखकर अपने को हाँ वो हमको केवल हमारे उनके जो अथॉरिटी इन्फॉर्म कर दी उधर हमारा उतना ही रोल है, और वो भी इन्फॉर्म करने के बाद वो करे ना करे वो भी निकाल देना माइंड से, नहीं तो ये दूसरा ऑफेंस फिर उसके प्रति होने लगता है और बढ़ता मतलब बाई प्रोडक्ट होते रहता है, जैसे सर्दी का एक किया तो दूसरा हुआ फिर तीसरा हुआ, ऐसा बाई प्रोडक्ट होते ही रहता है। हम इन्फॉर्म तो कर देते हैं लेकिन वो नहीं करता तो फिर उसको प्रभु जी भी ऐसे ही है, हाँ खुद नहीं ला देते। तो लेकिन एक दिल्ली वाले एक प्रभु जी है, मैं उनका एक प्रवचन सुन मतलब काफ़ी दिन पहले सुन रहा था कि प्रवचन क्या अमोघ लीला प्रभु नहीं नहीं एक कोई रोहिणी प्रभु को एक है पंजाबी बाके हाँ वो बोल रहे थे कि हमको जो संस्था के दृष्टि क्योंकि ये सारे बहुत समस्याएं होती हैं संस्था के दृष्टिकोण से जो अथोराइज पर्सन है उनको इन्वॉल्व लेके उसको दंडित भी करना ये सब चीज़ें करना चाहिए, नहीं तो फिर वो उसके लिए घातक हो सकता है क्योंकि उसको अथोराइज मिला हुआ है और वो नहीं करता है तो फिर उसका उसके लिए बहुत घातक होगा, वो उसके पतन होने की संभावना है क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूट को गाइड कर रहा है ऐसा, इसलिए उसको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा उसमें और होना ही चाहिए ऐसा करके, लेकिन सतर्कता बरतते हुए मतलब इस प्रकार का सही मूड में सही भाव में ऐसा करके बताएंगे। सही बात 11 बजे हाँ हाँ मैं जाते उसमें ले लूंगा उनके ऑफिस से लेने के लिए बोला। ओके ओके नो प्रॉब्लम।
मुझे दीजिए ना वो अपना जो 5 प्रकार के लक्षण।
हाँ मैं भेजता हूँ आपको, मैं तो उसको पेन से लिखा हूँ, मैं उसको बुक में से फोटो खींच लेता हूँ।
लगता है समुद्र की लहरें की तरह अपराध बंद नहीं हुआ ऐसे क्योंकि वो कंटिन्यू हो रहा है।